आज हम जिस बात के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है और वो एक विषय जुड़ा हुआ है उस परमात्मा के साथ, जिस परमात्मा को हम जन्म जन्म से याद करते आए, हर अच्छे और बुरे वक्त पे जिसे पुकारते आए, जिसकी आराधना करते आए, प्रार्थनाएं करते आए, पूजा पाठ करते आए, उस परमात्मा के साथ प्यार का एहसास कैसे हो। वो परमात्मा प्यार का सागर है, उसके प्यार के सागर को हम अपने जीवन में अनुभव कैसे करें। अगर वो सर्वशक्तिमान है तो क्या हमारे जीवन में उसकी शक्ति का अनुभव हम हर कदम में कर रहे हैं। कोई भी अच्छा कार्य अगर आपने जीवन में करना है तो उसके लिए शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, और पावर जब उस परमात्मा के साथ हम अपना मन का नाता जोड़ते हैं, जब अपने मन और बुद्धि इस परमात्मा पर एकाग्र करते हैं, तो परमात्मा से शक्ति का प्रवाह निकलकर हमारे पास आता है और हम शक्तिशाली बन जाते हैं। लेकिन क्या हमने अपने जीवन में उस परमात्मा के प्यार का अनुभव किया है? क्या हम शक्ति स्वरूप खुद बने हैं? अध्यात्म हमें सिखाता है स्वयं की पहचान और उस परमात्मा की पहचान, और स्वयं में उस परमात्मा का प्यार और शक्ति भरना। आज हम सबको देव भाइयों के प्यार का अनुभव है, मां का प्यार, भाई का प्यार, हर संबंध के प्यार का अनुभव है। लेकिन क्या परमात्मा से प्यार का स्नेह का अनुभव है? क्या वो एहसास हमें होता है कि वो हमारा सब कुछ है, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा साजन है, सगनी है, बंधु सखा है, माता पिता है? सर्व संबंधों का अनुभव परमात्मा से करना राजयोग कहलाता है। किसी को ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना भी कहते हैं, जो हम हर रोज सवेरे के सत्र में इसके ऊपर काफी डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। उस परमात्मा के प्यार को जीवन में कैसे उतारा जाए? आज परमात्मा स्वार्थ का विषय बन गया है, मतलब के टाइम उसे याद करते हैं। आज उसके साथ जो प्यारा सा नाता, निस्वार्थ नाता होना चाहिए था, उसके बजाय आज हमारा उसके साथ नाता मतलब का है, जरूरत पड़ने पे उसे याद करते हैं। जब कोई जरूरत पड़े तो भगवान याद आता है, मतलब के टाइम याद आता है। बच्चों को भी हम सिखाते हैं कि बच्चा आज क्या इम्तिहान है, आज मंदिर में होके जाना और जाते जाते भगवान को लालच देके चले जाना कि भगवान मेरा काम कर देना, मेरा पेपर ठीक कर देना, मुझे पास करा देना, मैं आकर प्रसाद चढ़ाऊंगा तुम्हारे मंदिर में आके, मैं 16 सोमवार के व्रत रखूंगा, मैं नारियल तोड़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये लालच उसको दे देना। इंसानों को लालच देते देते हम भगवान को भी लालच देने लग गए, भगवान को भी इंसेंटिव देने लग गए कि तुम ये करना, एक के साथ ये चीज आपको मिल जाएगी, एक के साथ एक फ्री डील हो रही है परमात्मा के साथ। प्यार के बजाय व्यापार हो रहा है, अब व्यापार परमात्मा इतना भोला भी नहीं है, पैसे तो भी भोला नाथ है, पर समझता जरूर है कि ये प्यार कर रहा है या व्यापार कर रहा है। कहते एक भगत था, भगवान को याद करता था, लेकिन उसका भगवान से धीरे धीरे विश्वास उठने लगा। उसे लगने लगा कि दुनिया के लोग जैसे मतलबी हैं, स्वार्थी हैं, सुख के टाइम में साथ देते हैं, दुख के टाइम पे भूल जाते हैं, कोई साथ खड़ा नहीं होता, शायद भगवान भी ऐसा ही धोखेबाज है, कोई भी धोखा देता है, अच्छे वक्त पे साथ होता है, जब मुसीबत आती है तो साथ नहीं देता। एक बार उस भगत के आगे एक परिस्थिति आई, समस्या आई, भगवान को याद किया, मदद नहीं मिल रही थी, उसे लगा भगवान देखा साथ छोड़ गया मेरा, आज मैं मुसीबत से गुजर रहा हूँ और भगवान मेरी सुनता नहीं है। तो भगवान को लहना ले रहा था, भगवान देखा तुम भी मतलबी हो, अच्छे वक्त पे तो आते हो, जो मुश्किल वक्त आए, जब जीवन में कष्ट आए, समस्याएं आए, तो तुम भी भाग जाते हो। कहते इतने में भगवान प्रकट हुए, भगवान ने उसको उसके जीवन का रास्ता दिखाया। उस रास्ते पे वो चल रहा था, चार पांव के निशान थे। भगवान ने कहा ये तुम्हारा अच्छा वक्त है, सुख के दिन है, चार पांव के निशान दिखाई दिए। भगत समझ गया कि दो पांव के निशान मेरे हैं, दो भगवान के हैं। जब अच्छा वक्त है तो भगवान हमारी उंगली पकड़ के हमारे साथ चलता है। अब भगवान ने उसको एक और रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे केवल दो पांव के निशान थे। वो उसका बुरा वक्त था, वो उसका मुश्किलों वाला वक्त था, समस्याओं वाला टाइम था। केवल दो पांव देख के भगत को संशय आ गया, देखा भगवान जब मेरे ऊपर आफत आई, केवल मैं रह गया, तुम भाग गए, मैं सच कहता था तुम भी धोखेबाज हो, तुम भी साथ नहीं देते। तो भगवान जी मुस्कुराए और कहे, क्या कहा, अरे ये जो दो पांव दिखाई दे रहे हैं ये तुम्हारे नहीं है, ये पांव मेरे हैं। जब तुम्हारे ऊपर आफत आई तो मैंने तुम्हें धरती पे चलने नहीं दिया, मैंने तो तुम्हें गोदी पे उठा लिया, पांव पे ले लिया। तो भगवान कितनी मदद करता है, लेकिन हिम्मत हमें रखनी पड़ती है, धीरज रखना पड़ता है। कई बार मदद थोड़ी लेट आती है, लोग कहते हैं थोड़ी देर जरूर है पर अंधेर नहीं है। तो वो भगवान जब मदद करता है तो कितना सुख मिलता है, कितना प्यार वो हमसे करता है। आप सबको इस चीज का एहसास होगा, जितनी केयर हमारी भगवान करता है ऐसी कोई नहीं करता, क्योंकि वो हमारा माता पिता है। माता पिता हमेशा बच्चों का ध्यान रखेंगे ही, रखेंगे या नहीं रखेंगे? क्या माँ बाप अपने बच्चों को कष्टों में देख सकते हैं? क्या माँ बाप अपने बच्चों को मुसीबतों में, समस्याओं में देख सकते हैं? और बच्चे भी बेफिक्र होते हैं, जब तक माँ बाप का साया होता है बच्चे बेफिक्र होते हैं, उन्हें पता है कि माँ बाप बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत आ गई तो माँ बाप है। वो परमात्मा भी तो हमारा माता पिता है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, ये हम गाते आए। क्या बालक का अनुभव किया? क्या कभी अपने आप को बच्चा समझा, बच्चा समझ के उसके साथ प्यार किया? आज तक हम क्या रहे, बच्चे नहीं बने। हमने परमात्मा के साथ जो संबंध भी बनाया ना, कहते तो रहे बाहर बाहर से, अंदर से जो संबंध था वो प्यार वाला संबंध नहीं था। हम क्या कहते रहे भगवान के पास जाके, क्या कहते हैं आप, तुम सब कुछ हो, तुम सर्वोच्च हो, उसकी महिमा में तो अच्छा अच्छा कहते आए, और जब अपना नंबर आया, मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं कपटी हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं खल हूं, मैं कामी हूं, भगवान के बारे में अच्छा कहते हो, फिर यहां तक नहीं, यहां तक कह दिया कि मैं तुम्हारी चरणों की मिट्टी हूं, धूल हूं। अब पिता को अच्छा लगेगा ये सुन के कि उसका बच्चा कहे कि मैं तुम्हारी चरणों की धूल हूं। अच्छा लगेगा उसको, वो कहेगा तुम तो मेरे सिर के ताज हो, मेरी गद्दी के मालिक हो, तुम तो इतने ऊंच हो और तुम कह रहे हो मैं चरणों का दास। परमात्मा क्या कहता है, तुम मेरे नैनों के नूर हो, मस्तक की मणि हो, गले का हार हो, सिर का ताज हो और दिल सख्त नशीन हो। कितना ऊंचा टाइटल है। और हमने अपने आप को क्या टाइटल दिए, हमने कहा मैं नीच पापी कपटी। आपका बच्चा आपके पास आया और कहे मैं नलायक, आप मारोगे दो थप्पड़। नलायक कैसे है भाई, पढ़ाई किया कर इंटेलिजेंट बन, मैं स्मार्ट हूँ इंटेलिजेंट हूँ और तू कहता मैं नलायक हूँ। हम भगवान के आगे अपने आप को नलायक कहते गए। और जैसा व्यक्ति कहता है वैसा बन जाता है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। प्रोग्रामिंग अंदर अंदर हो रही है। हमने कहा मैं मूर्ख खलकामी, भगवान ने कहा तथास्तु। बन गया मूर्ख, धीरे धीरे मूर्ख बनते गए, बेसमझ बन गए, पत्थर बुद्धि बन गए, क्योंकि गलत कहा। अब भगवान कहता है ये नहीं कहना, ये कहना। जैसे भगवान ऊंचा है, जैसे वो गुणों का सागर है, ऐसे हम भी गुणों के सागर हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे, वो शांति का सागर, वो प्यार का सागर, वो दया का सागर, और हम क्या, हम भी वैसे होनी चाहिए ना। अगर बाप से भी अच्छे होना चाहिए बच्चे को, तो बच्चे को तो बाप से भी ऊंचा बनना चाहिए, तब बाप का नाम रोशन होता है। तो हम परमात्मा का नाम तब रोशन करेंगे जब हम भी अपने आप को ये कहेंगे मैं भी प्यार स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए प्योर फिट सोल, आई एम ए पावरफुल सोल। मैं भी वैसा ही हूँ जैसे मेरे पिताजी हैं। कहना चाहिए ऐसा या नहीं कहना चाहिए। लखनऊ में एक बार एक व्यक्ति गया, टांगे पे बैठ गया। जो व्यक्ति टांगा चला रहा था, चलाते चलाते कहने लगा बाबूजी आपको बताएं हम कौन हैं, मेरे अब्बा के अब्बा के अब्बा जान यहाँ के नवाब हुआ करते थे, नवाब सदाउद्दौला, उनकी सवारी निकलती थी, अशरफियां लुटती थी, क्या नजारा होता था। सारी कहानी बता रहा था कि हमारे पूर्वज यहाँ के नवाब थे। अब जो व्यक्ति टांगे पे बैठ के जा रहा था, उसके मन में संकल्प चला, अरे तुम्हारे अब्बा के अब्बा के अब्बा जान नवाब थे और तुम तो टांगा चला रहे हो, तुमने तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, तुम्हारे पूर्वज राजा और तुम टांगा चला रहे हो। ऐसा ही हालत हमारी है। हमारा वो पिता, वो सब कुछ दुनिया का मालिक सर्वशक्तिमान, और हम क्या बन गए, नीच पापी कपटी। तो उसको अच्छा लगेगा परमात्मा को कि उसके बच्चे नलायक हो जाए, तो कहेगा भाई होशियार बनो, मैं इतना ऊंचा, मेरे नाम की इज्जत, मेरा कम से कम मेरे नाम की इज्जत तो करो। अब जैसा पिता है वैसे हमें बनना है। जैसे वो सबको प्यार करता है, परमात्मा सबसे प्यार करता है कि किसी से कम किसी से ज्यादा, सबको प्यार करता है। यहाँ तक कि जो चोर होते हैं ना डाकू, वो भी उससे प्यार करते, वो भी मंदिर में जाते हैं। लोग जितने भी खराब लोग हैं वो भी जाते हैं, वो उनको भी प्यार करता है, ये भी उनको बना देता भागो। तुम चोर कहेंगे मेरे मन मेरे पास क्यों आए, वो सबको देता है। क्योंकि जैसे सूरज, सूरज किसी से पक्षपात करता है, सूरज की रोशनी सबको एक समान मिलती है। अब कोई खुद ही गुफा में जाके बैठ जाए वो बात अलग है, लेकिन बाहर आएगा तो रोशनी मिलेगी। उसी तरह परमात्मा भी सबको देता है, बिना पक्षपात के देता है। हमें भी और सबको देना है, दाता बनना है। प्यार मांगना नहीं है, खुशी मांगनी नहीं है, शांति मांगनी नहीं है, अपने आप को इतना भरपूर करना है उससे लेके कि सबको बांट सको। आज तक हम भगवान के पास भिखारी बनकर आए, अब वो भगवान कहता है भिखारी नहीं अधिकारी बनो। जब तक कहा चरणों के दास, तुम मालिक हम दास, तो दास तो उदास रहता। हम दास नहीं है, हम उसके बच्चे हैं। बच्चा बाप का दास नहीं होता। दास को क्या मिलता है, नौकर को क्या मिलता है और बच्चे को क्या मिलता है, फर्क है। उस भिखारी रास्ते में जा रहा होगा तो 1 रुपया दे दोगे, ज्यादा ज्यादा 5 दे दोगे, और बच्चे को तो सारा ही माँ बाप का पैसा बच्चे का ही होगा। मांगने की जरूरत नहीं है, मांगने वाले मंगता नहीं है भगवान के पास बन बन के जाना। अब उससे ऐसा प्यारा सा रिश्ता बनाना है कि वो अपने आप आपको दे। मांगने की जरूरत क्यों, आपका हक है, मांगना नहीं है, अपने आप मिलेगा। हम उसे याद दिलाते हैं भगवान ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, क्या वो भूल जाता है जो उसको याद दिलाना पड़ेगा? क्या हमारी तरह भुलक्कर है, हम तो भूल भी जाए। उसे तो पता है उसने क्या देना है, किसको देना है, किसकी हैसियत कितनी है, क्या किसकी योग्यता है, और हमारी योग्यताओं से ज्यादा ही हमें देता है। तो उससे मांगने की जरूरत नहीं है, भिखारी बनने की जरूरत नहीं है, अधिकारी बनना है। दुनिया में तो लोगों को ये भी पता नहीं कि भगवान से मांगना क्या चाहिए। किसी ने अच्छी बात कही कि अगर भगवान से कुछ मांगना भी है तो सदबुद्धि मांगो, सदज्ञान मांगो। अगर बुद्धि सही हो गई तो सब कुछ सही हो जाएगा। भगवान गुरु ही देता जो आपको अच्छा लगता है, भगवान वो देता है जिसमें आपका अच्छा होता है। दोनों फर्क है, बच्चे को मिट्टी अच्छी लगती है, माँ बाप देंगे तो पहले भाई ये भी मिलेगी, वो रोएगा फिर भी नहीं देगी। हम भगवान से वो चीजें मांगते हैं जो विनाशी है। भगवान को पता है इनको दे दिया मैंने 2 करोड़, अगले दिन नोटबंदी हो जाएगी, सारा खराब चला जाएगा पैसा, इसलिए देता है। सरकार पकड़ लेगी कहां से आ गया ब्लैक मनी तुम्हारे पास, अगर मैं ऐसे दे दी आपको तो सरकार पकड़ लेगी कहां से आया पैसा भाई, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आप कहो जी भगवान ने दे दिया आपको, इनकम टैक्स वाले छोड़ेंगे। तो भगवान सोच समझ के देता है, वो चीज देता है जो आपको असल में चाहिए। क्या उससे हमें मिलता है क्या नहीं मिलता, वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी, तो राजा ने सोचा कि मेरा कोई वारिस तो है नहीं, इतनी सारी मिल्कियत, इतना सारा पैसा धन दौलत, मैं क्या करूंगा। उसे एक विचार आया, क्यों ना मैं लोगों में बांट दूं। उसने अनाउंस किया कि कल प्रजा में से कोई भी मेरे महल में आए और महल में जो आएगा उसको मैं बहुत सी चीजें दूंगा। अगले दिन महल के बाहर बहुत बड़ी भीड़ उमड़ आई, सारे लोग आ गए कि राजा पता नहीं क्या बांटेगा। राजा ने कहा सारे एक एक करके अंदर आओ और जो चीज जिसको पसंद है उसको हाथ लगाओ, तुम्हारी हो जाएगी। कुछ लोगों को हीरे पसंद थे, फटाफट हीरे पे झप, हीरे पे अटैक हो गया, हीरा ले लिया, हीरा उनका हो गया। कुछ लोगों को माताओं बहनों को ज्वेलरी गहने पसंद थे, उन्होंने गहनों पे, रानी के गहनों पे हाथ लगाया, गहने उनके हो गए। किसी को देश की बनी कपड़े पड़े थे वो पसंद आया, उन्होंने उसको हाथ लगा दिया। किसी को राजा के घोड़े तो किसी को राजा की घोड़े, किसी को राजा की हाथी, जो जिसको पसंद आया सब अपने अपनी पसंद की चीजों को हाथ लगा रहे थे और वो चीजें राजा उनको दे रहा था, वो चीजें उनकी हो रही थी। इतने में एक छोटी सी कन्या दरवाजे से गेट से एंटर की, ना वो इधर गई ना उधर गई, किसी सामान के तरफ नहीं गई, वो सीधे राजा की तरफ आने लगी। तो राजा ने देखा कि मेरी तरफ आ रही है, उसने सोचा कुछ पूछना चाहती होगी। तो राजा देख रहा था, वो आती गई राजा सिंहासन पे बैठा था और चुपचाप आकर राजा के पास आके राजा के ऊपर हाथ लगा दिया। अब राजा के ऊपर हाथ लगा दिया तो राजा किसका हो गया? उस लड़की का राजा हो गया। और राजा अगर उसका हो गया तो राजा का सारा राज्य, सारा राजा का पैसे धन दौलत किसके हो गए? उसी के हो गए। तो ये समझ हमें होनी चाहिए कि धन दौलत चाहिए या धन दौलत का मालिक चाहिए। बताओ, आपको स्वयं नारायण चाहिए या नारायण की सेना चाहिए? अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण के पास जाते हैं महाभारत युद्ध से पहले। दुर्योधन अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था, तो वो क्या मांगता? कहते मुझे नारायण की सेना दे दो। उसने सोचा इतनी बड़ी सेना, जिसके पास सेना होगी जीत उसकी होगी। लेकिन अर्जुन को पता था किसको मांगना है किसको नहीं मांगना। तो अर्जुन ने क्या मांगा? भगवान। और उसने क्या मांगा? भगवान की सेना। जीत किसकी हुई? जिधर भगवान था और धनुर्धर अर्जुन था, जीत उसी साइड की हुई। अब हम क्या करते हैं? हम कहते हैं हमें धन दौलत दे दो भगवान, मुझे ये कर दो, मेरा ये काम करा दो, मुझे नौकरी दिला दो, मुझे पैसे दिला दो, मेरे बेटे की शादी करा दो, गाड़ी दिला दो। ये क्या चीजें हैं? मेरे नारायण है या नारायणी सेना है? अब आपने नारायणी सेना लेनी है या भगवान को लेना है, फैसला आपका है। अगर भगवान को हाथ लगाया तो जीत आपकी, भगवान की सारी दुनिया के आप मालिक हैं, उसके बच्चे बन जाओ, हर चीज उसकी आपके लिए ही तो है। और अगर चीजों के पीछे गए, भगवान को भुला दिया, भगवान समझ जाता है इसका प्यार मेरे से नहीं है, इसका प्यार किससे है? इसका प्यार विनाशी चीजों से है, इसलिए वही मांग रहा है। हम भगवान को याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? सबसे पहले तो ये बताओ, आप सब भगवान को याद करते? जो भगवान को याद करते हैं कृपया अपना दाहिना हाथ खड़ा करो। ठीक है, सब भगवान को याद करते हैं। अब ये बताओ कि आप हर रोज भगवान को याद करते हैं या कभी कभी करते हैं? हर रोज करते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि मंडे के मंडे याद करोगे, संडे के संडे, ट्यूसडे के दिन, हफ्ते में एक बार कर लो, ऐसे तो नहीं। अच्छा, जब कोई समस्या आती है तो भगवान को याद करते हैं या जब समस्या का समाधान मिल जाए तब याद करते हैं? इम्तिहान वाले दिन याद करते हैं या जिस दिन रिजल्ट आना हो? कौन से दिन याद करते हैं? चलो जैसे भी याद करते हैं, कहा जाता है हर घड़ी परमात्मा को अपने साथ याद रखना चाहिए, पल पल उसकी याद में रहना चाहिए। हम जैसे भी याद करें, लेकिन अपने आप से पूछें हम क्यों परमात्मा को याद करते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया भगवान को याद करो। हिंदुस्तान में संस्कार बच्चों को बचपन से सिखा दिए जाते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि क्यों याद करें, क्या लॉजिक है, क्या तर्क है। हम उसे याद करेंगे तो क्या फायदा होने वाला है, हमें क्या मिलेगा, ये किसी ने नहीं बताया। ज्यादा से ज्यादा लोग ये सोचते हैं अगर हम भगवान को याद करेंगे तो हमारे सारे काम हो जाएंगे, जो चाहेंगे वो हो जाएगा। क्या काम हो जाएंगे? क्या हमें परमात्मा दे सकता है, क्या नहीं दे सकता, उससे क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता, इस बात की भी समझ होना जरूरी है। क्या भगवान इम्तिहान वाले दिन हमारा सब ठीक ठाक कर देगा अगर हम उसे याद करेंगे? हम भगवान को पेपर वाले दिन याद करते हो ना बच्चे, बच्चों को सिखाते भी हैं, क्या वो पेपर पहले लीक कर देगा आपके लिए? फिर क्यों याद करें? क्या बेनिफिट है? क्या भगवान को आपने कहा गाड़ी दे दे, भगवान आपको गाड़ी भेजेगा मर्सिडीज कार आपके घर में अगले दिन? क्या भगवान गाड़ियां बांटता है? गाड़ियां भी नहीं बांटता। अब आपके बेटे की शादी नहीं हो रही, भगवान मेरे बेटे की शादी कराएंगे? उसने मैरिज भी बोल रखा है, फिर वो क्या करता है? क्यों उसको याद करे? उसको होगा ना तर्क। भगवान को पेपर वाले दिन इसलिए याद नहीं करना कि वो सब ठीक कर देगा, उसको इसलिए याद करते हैं ताकि उसको याद करेंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। शांत मन से जो कुछ लिखेंगे वो अच्छे से अच्छा लिखेंगे, जब अच्छा लिखेंगे तो पेपर अपने आप अच्छा हो जाएगा। समस्याओं को याद टाइम हम भगवान को याद करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा आपकी समस्या खत्म कर देगा। समस्या तो है, आएगी, लेकिन वो समस्या जो पहाड़ की तरह आपको लग रही थी अब रुई की तरह हल्की हो जाए, राई की तरह हो जाए, तो समस्या बिल्कुल छोटी हो जाएगी। वो समस्याओं को समाप्त नहीं करता, वो समस्याओं से लड़ने की शक्ति आपको देता है। लड़ना किसको है? लड़ना किसको है? श्री कृष्ण खुद लड़ा या दूसरों को गाइड करके लड़ाया? खुद तो नहीं लड़ा ना, तो भगवान खुद नहीं लड़ता, वो ताकत देता है, गाइड करता है, इसलिए उसको याद करना है। वो हमारा मार्गदर्शक बनता है, हमें सिखाता है, शक्ति भरता है समस्याओं से लड़ने की। जब हमारी भी शक्ति फिर आ जाती है तो समस्याओं से हम अपने आप ही खुद लड़ते हैं। अब भगवान को क्यों याद करना है ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, क्या मिलेगा? हम भगवान को याद करते हैं, बड़ी सुंदर प्रेयर गाते हैं, आराधना प्रार्थना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भजन गाते हैं, भजन के शब्द एक एक बड़े सुंदर शब्द हैं, परफेक्ट शब्द हैं, लेकिन जब ये सब कुछ बोल रहे हैं मुंह से या किताब में पढ़ रहे हैं, उस वक्त हमारा मन कहाँ है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुख से प्रार्थना जब ही बोली जा रही है, मंत्र जाप हो रहा है, लेकिन उस वक्त हमारा मन कहाँ है? अगर मन वहां नहीं है तो उसके साथ कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, और उसके साथ अगर कनेक्शन नहीं जुड़ेगा तो ताकत नहीं आएगी। अध्यात्म का मतलब है, परमात्मा को याद करने का मतलब है कि कनेक्शन जुड़े तो सही। आपने टेलीफोन मिलाया, टेलीफोन मिल ही नहीं रहा, आप उठा के बैठे हो, एक तरफ से बोल रहे हो, दूसरी तरफ अभी कनेक्शन जुड़ा ही नहीं, तो पावर कैसे आएगी, बातचीत कैसे होगी? अब जब जो कुछ भी हम कर रहे हैं देखना है कि मेरी चार्जिंग उससे हो रही है, प्रैक्टिकल प्रूफ है कि मेरी प्रार्थना, मेरी आराधना, मेरी भक्ति, अगर मैं जो कुछ कर रहा हूं वो भगवान के साथ सही है या नहीं, उसका प्रूफ है चार्जिंग। मेरी आत्मा की, मेरे मन की चार्जिंग हो रही है, मुझ में शक्ति भर रही है। अगर चार्जिंग नहीं हो रही और ही खाली होके आ रहे हैं तो इसका मतलब कनेक्शन जुटा नहीं। अब प्यार भरा कनेक्शन उस परमात्मा से जोड़ना है, प्यार भरा नाता, प्यार भरा रिश्ता उसके साथ स्थापित करना है, ऐसा प्यार जैसा आपका अपने बच्चों के साथ, जैसा आपका अपने दोस्तों के साथ होता है, उस परमात्मा को आप दोस्त भी बना सकते हैं। और वो दोस्त इतना वफादार है कि अगर आपने उसको कोई चीज बताई वो लीक नहीं करेगा। दुनिया में आदमी दोस्त के साथ हर बात शेयर करता है, जो माँ बाप को भी नहीं बताएगा, हस्बैंड वाइफ में भी नहीं बताएंगे, दोस्त सहेली को बता देंगे। दोस्त का ऐसा नाता है, लेकिन कई बार वहां धोखा भी मिल जाता है। आप जिसको बात बता रहे हो, आप कहोगे भाई आपको बता रहा हूं, आपने किसी और को मत बताना। जैसे आपने दूसरे को ये कहा तो क्या करेगा, वो समझ जाएगा ये बताने वाली बात है नहीं, ये छिपाने वाली नहीं, किसी ना किसी को आगे बताएगा, वो किसी और को बताएगा, घूम फिर के वो बात फिर आपके पास आएगी, फिर आपको लगेगा देखा मैंने एक को बताया सबको पता चल गया। जिस बात को हम ही नहीं छिपा सके, अपने पेट के अंदर हजम नहीं कर सके, दूसरा कैसे हजम करेगा। जो बात हमारे 32 सालों के से निकल के बाहर आ गई, अब हम दूसरे को कह रहे हैं कि तुम किसी को मत बताना, वो कैसे उस बात को संभालेगा जब हम ही नहीं संभाल सके। जो बात हमें नहीं हजम हो रही तो दूसरे को कैसे होगी। ये दुनिया में होता है, लेकिन परमात्मा को आप कोई भी बात बता सकते हो, अपनी प्राइवेट बात, अपनी पर्सनल बात बता सकते हो, तो किसी को नहीं बताएगा, वो आपकी बात लीक नहीं करेगा। इसलिए किसी ने पूछा कौन सी बात परमात्मा से करनी चाहिए, दूसरे ने कहा उससे कौन सी नहीं, जो बात आए जो दिल में आए हर बात उसके साथ करनी चाहिए। दोस्त के साथ आदमी सोचता नहीं कि मैंने कौन सी बात करनी है, दोस्त में तो दिल से अपने आप बातें निकलती है। तो अगर आपने उसके साथ प्यारा सा नाता डिवेलप किया तो अपने आप दिल से बातें निकलेंगी, इतनी बातें निकलेंगी, इतनी बातें होंगी आपके परमात्मा के साथ कि दूसरों से बात करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ईश्वर के साथ हम मुलाकात करें और उसके साथ बात करें। एक बहुत प्यारा सा गीत हमारा है, ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मुलाकात तब होगी, बातचीत तब होगी जब उसके साथ हम प्यारा सा नाता डिवेलप करेंगे। हर बात उससे शेयर करनी है, घर से निकलने से पहले उसे कहना मैं जा रहा हूं, कोई भी काम करने से पहले उसको बता दो मैं ये काम कर रहा हूँ, गाड़ी में बैठ रहे हो साथ में उसको कहो आप भी बैठो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, सोने जा रहे हो भगवान तुम भी सो लो रेस्ट कर लो, वो भी रेस्ट आपके साथ कर लेगा, भगवान को सोते वक्त याद करके सुलाओगे साथ नींद अच्छी आएगी, रात को डरावने सपने नहीं आएंगे। हर काम में उसको इन्वॉल्व करना है, हर चीज उसको बतानी है, वही बातचीत है, वही मुलाकात है। जब वो बातचीत और मुलाकात आपकी होगी तो आपको एक प्यारा सा अनुभव होगा जो गीत के माध्यम से आप अभी सुनेंगे कि ईश्वर से हमने मुलाकात की है।
ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है, ईश्वर से हमने मुलाकात की है, बात की है, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम पे बरसात की है।
एक का साथ दो जहां से प्यारा है। किसका साथ है? इस परमात्मा का साथ दो जहां से प्यारा है। दुनिया में कोई साथ दे या ना दे, अगर वो हमारा साथी है तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। उसे अपना साथी बनाना है। अर्जुन ने क्या किया था? साथी बनाया ना, साथी बनाओ और सारथी भी बना लिया, गाइड भी उसको ही बनाया, तो हमारे जीवन के रथ को चलाएगा। तो जीत हमारी होगी। वो प्यार का अनुभव हमें करना है, भगवान शब्दों का नहीं प्यार का भूखा है। वो भावना देखता है, शब्द नहीं देखता। हम शब्द तो बहुत ऊंचे ऊंचे बोलते आए, लेकिन भावना जब तक नहीं डरेगी, मन से नहीं तब तक बोलेंगे, तब तक उस तक वो बात पहुंचने वाली नहीं है। याद रखना। कहते एक बार एक ग्वाला था। ग्वाला भेड़ बकरियां चराता था। चर्च के बाहर भेड़ बकरियों को चरा रहा था। अचानक उसको बैल सुनाई दी चर्च के अंदर से। उसने सोचा मैं देखूं चर्च में जाके क्या हो रहा है। तो वो चर्च में जाता है तो देखता है कि चर्च के अंदर फादर पादरी खड़ा है, सबसे आगे पीछे लोग खड़े हैं और वो कुछ बोल रहे हैं। तो वो जो लड़का था ग्वाला था वो भी वहां खड़ा हो गया। वो अनपढ़ था तो वो भी कुछ बोलने वो कुछ बोल रहा था, प्रेयर कर रहा था फादर, वो भी कुछ ना कुछ बोलने लग गया। तो पादरी ने देखा ये कौन खड़ा है, देखा तो एक बच्चा खड़ा है। उसने सोचा ये कुछ बोल रहा है, ये प्रेयर बोल रहा है या क्या बोल रहा है। संकल्प चला पादरी का, लेकिन वो खुद अभी प्रेयर कर रहा था तो इसमें उसने पूछा नहीं। जब प्रेयर पूरी हो गई तो उस लड़के को बुलाया, ये लड़के को क्या बड़बड़ा रहा था, क्या बोल रहा था? कहते आप क्या बोल रहे थे? पादरी कहता मैं तो प्रेयर बोल रहा था। लड़का कहता मैं भी प्रेयर बोल रहा था। फादर को लगा था तुम कौन सी प्रेयर बोल रहा था। तो लड़का कहता तुम कौन सी बोल रहा था? पादरी ने अपनी प्रेयर सुनाई। ये प्रेयर बाइबल में लिखी है, हर जगह ये बोली जाती है, यही बोलनी होती है, तुमने क्या बोला? तो छोटा लड़का था कहता ये भी मुझे आती। तो तुमने क्या बोला? कहते मुझे तो एबीसीडी आती है, मैं एबीसीडी बोल रहा था, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो तुम प्रेयर बोल रहे हो उसमें भी एबीसीडी के यही 26 अक्षर हैं। मैंने भगवान को कह दिया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे ये प्रेयर नहीं आती, मैं एबीसीडी आती है, मैं एबीसीडी सुना रहा हूं, तुम्हें जो अच्छा लगे अपने हिसाब से जोड़ लेना। अब बताओ भगवान उस बच्चे से खुश हुआ होगा या उस पादरी से खुश हुआ होगा? बच्चे से हुआ होगा, क्योंकि बच्चा प्यार से बात कर रहा था, भावना से बात कर रहा था। शब्द भगवान को समझ नहीं आते। ये भाषाएं हमने बना रखी है, हजारों भाषाएं हैं। आप चाहे उड़िया में बोलो, चाहे संस्कृत में बोलो, चाहे हिंदी में बोलो, चाहे इंग्लिश में बोलो, आपके अंदर से सोच क्या है, भाव क्या है, वो उस तक पहुंचते हैं। इसलिए उस बच्चे के भाव उस तक पहुंच गए। तो हमें भी क्या करना है, क्या करना है? अपने भाव अच्छे रखने हैं, प्यार के साथ उसको याद करना है, प्यार के सागर को प्यार में बांध लेना है। प्यार में बांध लिया तो वो आपके हमेशा साथ रहेगा, हर वक्त आपका साथ निभाएगा, हर मौके पे आपके पास खड़ा होगा। आज हमने क्या किया? भगवान के साथ बिजनेस किया, व्यापार किया, शर्तें लगाई, तुम ये करोगे हम ये करेंगे, तुम जितना करोगे उतना हम करेंगे, तुम पास करोगे तो प्रसाद नहीं चढ़ाओ, नहीं पास हुआ तो कोई प्रसाद नहीं। ऐसा संबंध था, या नौकर या मालिक वाला संबंध था। अब हमें पता चला उसके साथ हमने चाहे जीव माता पिता समय बालक सुमन तुम सब कुछ हो समेव सर्वंगी देव देव तुम सब कुछ हो मेरे लिए, तुम ही मेरे दोस्त हो, तुम ही मेरे साधन हो, तुम ही मेरे प्रियतम हो, तुम ही मेरे माँ बाप हो, बंधु सखाओ, सब कुछ तुम हो। वो दिल से अनुभव करना है। क्या कोई पिता ये चाहेगा कि उसका बच्चा उसके पास आए और ये कहे कि पिताजी तुम मेरा ये काम कर देना, मैं तुम्हारे लिए हर हफ्ते व्रत रखूंगा, खाना नहीं खाऊंगा। क्या पिता कभी चाहेगा? क्या पिता कभी चाहेगा कि उसका बच्चा उसके लिए नंगे पांव चलकर उसके पास आए, छाले पड़ जाए नंगे पांव में, खून निकलने लग जाए? क्या पिता चाहेगा? क्या पिता ये कहेगा कि ये सब कुछ तुम करो तब मैं तुम्हारा काम करूंगा? कोई भी पिता अपने बच्चे को कष्ट में नहीं देखेगा। तो वो परम पिता है, वो परमात्मा है। क्या वो इस चीज से खुश होगा कि हम उसके लिए अपने काम करवाने के लिए हम भूखे रहे, हम मंदिर की सीढ़ियां नंगे पांव चलकर जाएं, छाले पड़ जाएं, खून निकलने लग जाए, तब वो खुश होगा क्या? तो किस चीज से खुश होता है ये जानना है। पिता बच्चा अगर इंटेलिजेंट होगा, बाप का कहना मानेगा, बाप तब खुश होता है। वो अगर हम उसकी बातों को मानेंगे, हम ईश्वर को एक मानते हैं, ईश्वर की एक नहीं मानते, उसकी बात वो कहेगा छोड़ो बुराइयां, मैं ये नहीं छोड़ सकते। वो कहेगा काम क्रोध लोभ तीन नरक के द्वार है, सारी गीता इससे भरी पड़ी है, उनको छोड़ो। हम नहीं छोड़ते, हम कहते काम विकार वाला दुनिया कैसे चलेगी, गुस्सा नहीं करेंगे, लोग हमें हल्के में लेंगे, लालच नहीं होगा तो कमाई कैसे होगी, बिजनेस कैसा होगा, छोड़ते ही नहीं। वो कहते हैं इनको छोड़ो, मेरी बात मानो, जो मानेगा उसको प्यार मिलेगा, जो नहीं मानेगा जो होशियार बच्चा होगा, स्पूर्त बच्चा होगा, उसे परमात्मा का प्यार मिलेगा। और ये जो हम हठ करते हैं, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, उससे परमात्मा खुश होने वाला नहीं है। क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है, इसकी भी समझ होना बहुत जरूरी है। तो भगवान हमसे प्यार करता है, हमारी केयर करता है, हर मोड़ पे हमारा साथ निभाता है। जब चारों ओर निराशा के बादल छा जाए, मुश्किलों से हम घिर जाए, समस्याएं खत्म होने का नाम ले ना ले, जब हम हिम्मत निखारने लग जाएं, अंदर से टूट जाएं पूरी तरह, उस वक्त भी वो परमात्मा कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी कोने से हमारी मदद करवाता है। कोई ना कोई निमित्त बन जाता है जो हमारी मदद करता है। उसे कौन भेजता है? आपको अनुभव होगा कि जब कोई भी साथ दे रहा था, कहीं ना कहीं से आपको किसी ने मदद कर दी और आपका काम हो गया। किसने भेजा? उसके ऊपर विश्वास और भरोसा अगर है, अगर निश्चय है कि वो मेरे काम नहीं करेगा तो किसके काम करेगा? मेरी बात में, मैं बच्चा हूं इसका, वो मेरा बाप है, मैं उससे काम करवाऊंगा तो करेगा, करना पड़ता है उसको। लेकिन वो भरोसा रखना पड़ता है और धीरज रखना पड़ता है, धीरज का फल मीठा होता है। एक बार एक बहुत सुप्रसिद्ध कैंसर का डॉक्टर था, डॉक्टर मारक को एक कॉन्फ्रेंस में दूसरे शहर में जाके, बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था मेडिकल का, वहां पर उसने जो रिसर्च की थी उस रिसर्च के लिए उसको बहुत बड़ा इनाम मिलना था, उसको सम्मानित किया जाना था डॉक्टर मारक को। तो जिस दिन उसको सम्मान मिलना था, वो फ्लाइट लेके उस शहर पे जा रहा था। फ्लाइट में अचानक टेक्निकल खराबी आई, इमरजेंसी लैंडिंग बीच के किसी दूसरे शहर में करनी पड़ी। और उसने सोचा कि कैसे जाऊं, इनाम तो मिला है, उसने इतनी मेहनत की थी उसके लिए, लेकिन वो बहुत दूर है शहर, तो दूसरी कोई फ्लाइट थी नहीं। उसने सोचा चलो टैक्सी करता हूं, अब टैक्सी उसको मिल गई तो टैक्सी बिना ड्राइवर के मिली। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, इनाम तो लेना है, खुद ही ड्राइव करके चलता हूं। तो उसने टैक्सी ली और ड्राइव करके चलना शुरू किया। अब एक घंटा हाईवे पे चल रहा था, अचानक धूल भरी आंधी आई, तूफान आया, कुछ भी दिखना बंद हो गया, अंधेरा ही अंधेरा, और वो रास्ता भटक गया। कौन से रास्ते पे जाना है भूल गया, दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। आधे घंटे बाद उसको रियलाइज हुआ कि मैं रास्ता भटक गया हूं, अब कहीं नजर नहीं आ रहा किधर जाना है। उसने सोचा अब तो पहुंच नहीं पाऊंगा, अब मैं इनाम नहीं ले पाऊंगा। हताश हुआ, निराश हुआ, लेकिन क्या किया जाए, सुनसान सड़क, दूर दूर तक कहीं कोई घर नहीं, कोई रास्ता बताने वाला नहीं। अचानक थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद उसे एक छोटा सा घर सड़क के किनारे नजर आया। उसने वहां कार रोक के बेल बजाई और वहां एक महिला बाहर आई। उसने कहा कि मैं ऐसे वैसे जा रहा था, रास्ता भटक गया, बाहर बहुत तूफान है, मैं एक टेलीफोन करना चाहता हूँ, अपने घर वालों को बता देना चाहता हूँ कि आपके पास टेलीफोन है। वो महिला ने जवाब दिया, हम गरीब हैं, हमारे पास टेलीफोन नहीं है, लेकिन आप बाहर क्यों खड़े हैं, बाहर बहुत तूफान है, आप अंदर आ जाइए, आप पानी पीजिए। वो अंदर चला गया, उस महिला ने उसको पानी दिया, चाय पीने के लिए चाय दी, उसका ध्यान रखा। थोड़ी देर बाद महिला ने उसके लिए खाना बनाया और खाना बना के उस महिला ने उस डॉक्टर को कहा कि इस भोजन को करने से पहले हम भगवान को भोग लगाते हैं, हम उसकी प्रेयर करते हैं, फिर हम इसे खाएंगे। डॉक्टर महाराज कहता, मैं भगवान को नहीं मानता, आप अपनी प्रेयर अपनी प्रार्थना कर लो, आप अपना भोग लगा लो, मैं तब तक चाय पीता हूँ। तो उस महिला ने अपने छोटा सा एक बच्चा था उसके साथ खड़े होकर भगवान के पास अपने तरीके से कई तरह की प्रेयर की, कई तरह से प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क देख रहे थे चाय पीते पीते कि ये महिला शायद बहुत दुखी है, परेशान है, इसलिए कई तरह की प्रेयर कर रही है। जैसे ही प्रेयर पूरी हुई, डॉक्टर मार्क ने उस महिला से पूछा, आप भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे? तो उस महिला ने कहा कि ये मेरा छोटा बेटा है, उसको बचपन से ही कैंसर हो गया है, मैं भगवान से कह रही थी कि भगवान अब इस बच्चे को कैसे बचाऊं, इसका इलाज दूर दूर तक किसी को नहीं आता। सुना है एक डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर मार्क, बहुत किसी दूर के शहर में रहता है, वो इसका इलाज जानता है। अब हम तो गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम तो इलाज कर नहीं सकते, मैं तो भगवान से कह रही थी, भगवान ये बच्चा तुम्हारा है, तुमने ही इसका इलाज कराना है। जैसे ही ये शब्द डॉक्टर मार्क ने सुने, वो हैरान हो गया। क्यों हैरान हुआ, और मन ही मन उसके आंखों से आंसू आने लगे, और मन ही मन उसने कहा, गॉड इज ग्रेट। उसे पूरी बात याद आई, कैसे वह इनाम लेने के लिए गया था, फ्लाइट कैंसिल हो गई, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, टैक्सी ली बिना ड्राइवर के मिली, रास्ते में आंधी तूफान आए, रास्ता भटक गया, और मैं जहां जाना था वहां ना पहुंचे, कहां पहुंच गया, उस महिला के घर में पहुंच गया जिसको जरूरत थी। उसने कहा, गॉड यू आर ग्रेट। उसके बाद उसने दो सबक लिए, भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए, भगवान जिसकी मदद करना चाहे उसकी मदद कभी भी कर सकता है, और गरीबों की असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। ये दो मैसेज हमें उसके मिले, और हमें क्या सीखना है। भगवान कब मदद करता है, भगवान को हमने आखिरी सहारा बना दिया है, जब कुछ ना मिले तो भगवान नहीं, सबसे पहला सहारा, सच्चा सहारा वो ईश्वर है। उससे वो प्यार भरा नाता जोड़ना है, प्यार का संबंध जोड़ना है और भरोसा विश्वास निश्चय रखना है। निश्चय बुद्धि विजयती, गीता के महावाक्य, जिसको निश्चय है वही विजय को पाता पट करता है। आपको भरोसा हो, निश्चय हो, विश्वास हो, भगवान मेरे साथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। इतना गीत बना लो मुन्ना कुमारी ने, यहाँ के गीत सुनना बड़े अच्छे अच्छे गीत हैं, 5000 गीत हैं, 5000 भजन, एक एक भजन मीनिंग वाला है, आपकी आत्म उन्नति करने वाला है, आपका आपको मोटिवेशन देने वाला है, आपकी तरक्की करने वाला है। एक एक चीज आपको आगे बढ़ाएगी, परमात्मा को अगर साथ रख के चलेंगे, उसके प्यार का अनुभव अगर हम करेंगे, करेंगे ना प्यार का अनुभव। अब हम परमात्मा को क्यों याद करें, वो प्रश्न अभी भी बाकी है। क्या मिलेगा उसको याद करके, कुछ कुछ बताया। सबसे स्पष्ट एक लाइन में मैं कहूं, भगवान को इसलिए याद करेंगे क्योंकि अगर हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान जैसे बन जाएंगे, जैसा वो शांति का सागर, ऐसे हम भी शांत स्वरूप बन जाएंगे। वो प्रेम का सागर, हम प्रेम स्वरूप बन जाएंगे। जिसको भी आप याद करोगे उस जैसा बन जाओगे, ये दुनिया का भी नियम है। आप उस व्यक्ति को याद करो जो आपको तंग करता है, कष्ट करता है, परेशान करता है, कैसा फील होगा। जैसे आपके विचार नहीं मिलते उसकी, उसको याद करो तो आपको कष्ट महसूस होगा। और उस व्यक्ति को याद करो जिसने आपको सुख दिया हो, शांति दी हो, आपका भला किया हो, तो चेहरे पे खुशी आ जाती है। जिसको याद करोगे उस जैसे बन जाओगे। व्यक्तियों को याद करोगे उन व्यक्तियों की तरह बन जाओगे, उनकी अच्छाइयां भी आ जाएंगी, बुराइयां भी आ जाएंगी। इंसानों में बुराइयां ज्यादा हैं, अच्छाइयां कम हैं, तो बुराइयां आ जाएंगी। लेकिन परमात्मा तो अच्छाइयों का भंडार है, उसको याद करोगे सारी अच्छाइयां, सारे दिव्य गुण आपके अंदर आने लग जाएंगे। ये फायदा है। परमात्मा न गाड़ी देता है, न मकान देता है, परमात्मा वो देता है जो उसके पास है। हमें क्लियर हो सूरज क्या देता है क्या नहीं देता। सूरज लाइट देता है, हीट देता है, वो एनर्जी का सोर्स है। ऐसे ही वो परमात्मा भी एनर्जी का सोर्स है। वो हमें 7 गुण जो हम बताए थे आप सवेरे के सेशन में, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ये 7 गुणों का सागर है, भंडार है, ये वही देता है। जिसके पास ये 7 गुण आ गए, वो किसी चीज की कमी उसको रह नहीं सकती। जिसके पास ज्ञान होगा पैसा आएगा या नहीं आएगा, जिसके पास खुशी होगी उसका बिजनेस, जिस हमेशा प्यार से बात करेगा उसका बिजनेस अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये 7 गुण को आपने धारण कर लिया, अब इन्हें अपने जीवन में उतारना है। और अगर इन्हें जीवन में उतार लिया तो जीवन फूलों की सेठ बन जाएगी। प्यार की निशानी है, प्यार वाला जो भी दे खुले हृदय से उसको स्वीकार करें। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, वो प्यार है। जो भी वो देना चाहे उस प्यार को हम अनुभव कर सकें, चाहे वो खुशी दे या गम दे। ये नहीं जब अच्छा अच्छा दे रहा है तो प्यार, जब अच्छा नहीं मिला तो तुम तो हो ही नहीं। लोग भगवान बदल लेते हैं आजकल, इतने मतलब ही हो गए। जहां से मिलता है उसको याद करेंगे, अगर मिलना बंद हो गया लोग भगवान चेंज कर लेते हैं। नहीं, वो प्यार नहीं है। प्यार का मतलब तुम्हारे फूल भी मेरे, तो तुम्हारे कांटे भी मेरे। जो तुम जैसे रखना चाहो जहां रखना चाहो मैं उसी हाल में खुश हूँ, ये है प्यार। जो वो देना चाहे दोनों ही हमें पसंद है, ये है प्यार। अब प्यार का रिश्ता निभाने के लिए, उसे प्यार डिवेलप करने के लिए आज का टॉनिक आपको मिला है। हर रोज ये होमवर्क करते या नहीं करते, हर रोज इसके ऊपर मनन चिंतन करना, सोचना एक एक बात, 16 आने सही है, एक एक बात हीरे तुल्य है। तो सभी दोबारा खड़े हो जाएं और इसको संकल्प लेते हुए हम आज का होमवर्क रिवाइज करेंगे। हाथ आगे करके, मैं भाग्य विधाता भगवान का बच्चा हूँ और बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। भगवान मुझे कह रहे हैं, बच्चे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूँ ना, मैं हजार भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हें मदद करने के लिए आ जाऊंगा। बच्चे भगवान को बुलाएं और भगवान ना आए ये हो नहीं सकता। ये विश्वास चाहिए कि हम बुलाएंगे और प्रभु नंगे पांव दौड़े चले आएंगे। ये विश्वास, ये भरोसा, ये हमें राजयोग से मिलता है। सभी अपने अपने स्थान से बैठ जाएं। ये शक्ति हमने अपने जीवन में भरनी है। आज आपका आखिरी दिन है, 5 दिन से आप इन सब बातें सुन रहे हैं, लेकिन केवल 5 दिन ही पर्याप्त नहीं है राजयोग के लिए। बहुत से लोगों ने सवेरे का सत्र भी किया, 5 सुबह और 5 शाम, 10 सत्र किए। सुबह जिन्होंने मेडिटेशन सीखी, कुछ लोगों ने सीखी, कुछ एक ने नहीं सीखी। अभी आपको और बहुत कुछ सीखना है, अभी एक आरंभ हुआ है, एक यात्रा जो आपको उस परमात्मा की तरफ ले जाएगी। उस यात्रा की आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आए हैं, आपने शुभारंभ किया है, लेकिन अब खड़े मत हो जाना। मंजिल तक पहुंचना है तो ये गाड़ी तब मंजिल पे पहुंचेगी, खुशियां तब जीवन में आएगी जब यात्रा पे चलते रहेंगे। तो ये अंतर जगत की यात्रा, ये परमात्मा से मिलन मनाने की यात्रा आपकी चलती रहेगी। आज आखिरी दिन केवल यहाँ प्रोग्राम का है। कल से आप सबको जो ब्रह्मा कुमारी का पुल के दूसरी तरफ सेवा केंद्र है, वहां पर इसी वक्त आना है, जहां पर आपको आगे की चीजें बताई जाएंगी। और आपने आने वाले 5 दिन और आना है। अब यहाँ ज्यादा दिन हम नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ तो 5 दिन की परमिशन है ना। अब आपने सेंटर पे आना है, आश्रम पे आना है, इसी वक्त आना है। और आपको अगली चीजें, अभी आपने ABC सीखा है, अभी इंग्लिश के बोलना सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अभी भगवान से जुड़ना है तो कुछ और भी करना है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आपने आते रहना है सेवा केंद्र पर, आकर कल से अपनी यात्रा कंटिन्यू करनी है। अभी बहुत कुछ आपको सिखाया जाना बाकी है, और फिर जब आप सीख लेंगे तो घर बैठे भी आप वो चीजें कर लेंगे, ठीक है। तो कल शाम को कौन कौन आएंगे, आएंगे ना, यहाँ तो गर्मी है, वहां पंखे के नीचे बैठाएंगे हॉल में, तो वहां आपने आना है। और सवेरे का सफर कल यही रहेगा। जो सवेरे आ रहे हैं उनको सवेरे ही आना है, वो सवेरे आएंगे ही आएंगे, और कल तक यहाँ और परसों से कहाँ पर उनको सेवा केंद्र पे आना है। उनकी पांच दिन, पांच ये और पांच और दस तक पहुंच गए, उनका ग्यारहवां दिन शुरू होगा। और जो केवल शाम को आए उनके पांच दिन हुए हैं, उनका छठा दिन शुरू होगा। और ये यात्रा आपने तब तक करनी है जब तक मंजिल मिल ना जाए, जब तक खुशियां आपके द्वार पर परमानंद आपके घर में ना घुस जाए, जब तक आपका उस परमात्मा से मिलन हो ना जाए। आपने आते रहना है, सीखते रहना है और इस यात्रा को कंटिन्यू करना है। परमात्मा से अपना जन्म सिद्ध अधिकार, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार लेना है, ताकि आपके मुख से निकले कि ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी बात की है, आपका दिल गाय है कि भगवान मिल गया, भगवान से अब हम मिल के आए हैं, वो अनुभव करना है। तो अभी दो मिनट के लिए तुम्हें अपनी सीट पे बैठते हुए बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाए, सीधे होके कमर सीधी, एकदम बॉडी रिलैक्स। हम मेडिटेशन का अनुभव करते हुए परमात्मा का थैंक्स करेंगे बिल्कुल शांत अवस्था में, भ्रिकुटी के मध्य मस्तक के बीच अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा मस्तक के बीच में बैठा हूँ, चारों ओर मुझ आत्मा से शांति की किरणें, प्रेम की किरणें, आनंद की किरणें निकल रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति भी मेरा स्वधर्म है। स्वयं भगवान खुशियों का खजाना मुझ में भर रहे हैं। मैं आत्मा खुशियों से भरपूर हो रही हूँ। भगवान मेरे सिर पे हाथ रख के वरदान दे रहे हैं, खुश नसीब भग, भाग्यवान भव, आज से खुशियों के दिन शुरू हो गए। भगवान मुझे ले गए, भगवान से प्यार करना मैंने सीख लिया, भगवान को अपना मैंने बना लिया। भगवान मेरा साथी बन गया, मेरा सारथी बन गया, मेरा मार्गदर्शक बन गया। अब मैं भगवान का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं वही करूंगा जो भगवान मुझसे चाहेंगे। भगवान मेरा हो गया है, उसका सब कुछ मेरा है, मैं उसका वो मेरा। कितना प्यारा नाता बन गया मेरा इस भगवान के साथ। और भगवान मेरे सामने खड़े हैं, उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ रही है, मुझे नजर से निहार कर रहे हैं। अब आज से मैं भगवान के बताए रास्ते पे ही चलूंगा, ये मेरा भगवान के साथ वायदा है। भगवान मेरा हो गया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी आप सबके मनोरंजन के लिए हमने गुब्बारे तैयार कराए हैं। बच्चे गुब्बारों के साथ खेलते हैं ना, तो आज खुशी का उत्सव मनाएंगे और सब गुब्बारों के साथ खेलेंगे। खड़े होके गुब्बारे के साथ खेलेंगे। नाचेंगे 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 तो आप सब ऐसे ही आनंद में झूमते रहें, गाते रहें, मुस्कुराते रहें, यही हमारी शुभकामना है। आप सदा खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। ओम शांति।